ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणकरुणाकान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः. हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्त नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि नमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कलिकानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जय अद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द. जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जय द्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जय द्वैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द. सर्वप्रथम हम सब सारे सम्मिलित वैष्णव भक्तवृंदों के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं और हम कृपा याचना करते हैं कि भगवान के संबंधित कुछ दो शब्द सही ढंग से हम बोल पाए. हम सब लोग ये जगन्नाथपुरी धाम यात्रा के लिए साथ में जुटे हैं महत्वपूर्ण साल में होने वाले इस यात्रा के लिए. तो हम यात्रा में क्यों आते हैं?
FM 97
okay. श्रीपाद रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर हम वैष्णव के जीवन में सदा हमें भगवान की ओर अग्रसर कैसे हम होते रहे और कैसे हमारी भक्ति में रुकावट ना आए और हमारी भक्ति ना घटे, इस तरह एक भक्त को सोचते रहना चाहिए. तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आए हैं यात्रा में. जिस स्तर पर हो उस स्तर से और दो कदम आगे बढ़ने के लिए हमें मौका मिले, इसके लिए हम लोग आए हैं. देखिए आप लोगों ने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में आए थे, अनेक वज्रवासी भी आए थे, तभी ऋषि मुनियों को कुछ उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक बोलते हैं, यस्यात्मबुद्धिर्पुणपे त्रिधातुके स्वधी कलत्रादिषु भौम इज्यदि यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन कर्हि चेत् जनेषु अविज्ञेषु स एव गोकरः। इस श्लोक में चार बुद्धि बताते हैं, आत्मबुद्धि, ममता बुद्धि, इज्य बुद्धि और तीर्थ बुद्धि। तो इसके संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनके जैव धर्म में लिखते हैं कि आत्मबुद्धि का मतलब है जो देहात्म बुद्धि में डूबा हुआ हो, अपने खाने पीने के बारे में, सोने मैथुन के बारे में ही सोचने वाला हो, उसको आत्मबुद्धि बोलते हैं। और आत्मबुद्धि के कारण सारी दुनिया भटकता जा रहा है। जैसे हमने सुना किसी हाउसिंग कॉलोनी में लिफ्ट थोड़ा खराब हो गया, धीमी से चलने लगा, सब लोगों ने शिकायत किया, तो ओनर ने सोचा कि बहुत खर्चा करना पड़ेगा नया लिफ्ट लगाने के लिए, लेकिन किसी ने उसको आइडिया दिया कि तुम आईने लगा दो अंदर, लोग शिकायत करना छोड़ देंगे। तो आईने लगा दिया, उसके बाद सब शिकायत छोड़ गया, उसके बाद किसी ने नहीं दिया। आप लोग कारण जानते हो क्यों। तो इसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं इसको। और ममता बुद्धि का मतलब है सिर्फ अपने, मैं, मेरे परिवार, मेरे नाता रिश्ता, इसके बारे में सोचना, इससे ऊपर कभी नहीं सोचना। क्षण भंगुर, क्षणिक सुख इत्यादि में डूबे रहना, इसका ममता बुद्धि बोलते हैं उसको। और ऐसे लोग अपने घर को ही केंद्र बिंदु बनाकर, जैसे कुल्लू का बैल बोलते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हैं, ऐसे भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं, मृत्यु के पर्यंत उसके बाद क्या होने वाला है उसके बाद में कुछ चर्चा नहीं, साधु संतों की संग नहीं, अपने पैसे कमाना, खाना पीना, सोना, इसमें उसको ममता बुद्धि बोलते हैं। आगे जाकर बोलते हैं इज्य बुद्धि का मतलब अपने जन्म स्थान को सोचना है कि ये बहुत पवित्र है क्योंकि मेरा जन्म हुआ है इधर, ऐसे इस तरह सोचना, उसको इज्य बुद्धि बोलते हैं। और चौथा है तीर्थ बुद्धि। तीर्थ बुद्धि का मतलब है तीर्थ स्थलों में प्रयाण करना सिर्फ साइट सीइंग के लिए। अगर लोगों को पूछा जाए यात्रा में लोग क्यों जाते हैं, इस यात्रा में तो सब लोग सोलह माला करने वाले हैं, इसलिए गंभीर भक्त हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब हम प्रचार काम में जाते हैं, कभी कभी नए नए लोग जो जुड़े हैं भक्ति में, एक माला दो माला करने वाले भी, वो भी यात्रा में जाते हैं, बोलते हैं वृंदावन जा रहे हैं, हम मथुरा जा रहे हैं ऐसे, लेकिन यात्रा में जाने का अलग कारण होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे बहुत तंग करते हैं घर में, थोड़ा घुमा कर लेके आएंगे, इसलिए वो ऐसे लेके जाते हैं उनको। कुछ कुछ लोग साइट सीइंग के लिए जाते हैं, कुछ देख कर आने के लिए, तो इस तरह अलग अलग लोग अलग अलग कारण से जाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने इस तरह यात्रा करना जो है उसको खंडन किया है। वो बोलते हैं कि अगर यात्रा करते करते, चारधाम यात्रा करते हैं लोग, इधर उधर घूमो घामो, लेकिन कुछ आध्यात्मिक प्रगति नहीं प्राप्त किया हो कोई व्यक्ति, उस तरह का यात्रा का मतलब ही नहीं है, इसलिए इसको तीर्थ बुद्धि बोलते हैं इसको। तो ऐसे व्यक्ति को गो गाय नहीं तो गधा बोला गया है। कारण क्या है, चार बुद्धि बोला हमने, आत्मबुद्धि, ममता बुद्धि, इज्य बुद्धि, तीर्थ बुद्धि। क्यों गाय कहा गया है, गाय जो होता है वो थी है, वो अपने बछड़े को जब देखती है तभी तो दूध देती है ना, नहीं तो दूध नहीं देगी वो। लेकिन कभी कभी अगर बछड़ा मर गया हो तो बछड़े को के चमड़ा को लेकर उसके अंदर कुछ भर कर वो बछड़े को सामने रखते हैं, तब गाय उसको उसको छाटती हुई वो दूध दे देती है। इस तरह उसका चमड़ा का बुद्धि है उसका, उसका मालूम नहीं कि वो वत्स नहीं है उसमें। इस तरह खरा बोला गया जो गधा है, गधा क्या, गधा के पीठ के ऊपर कभी कभी बासमती का चावल रखा गया है लेकिन वो खुद खा नहीं पाता है, उठा कर लेके जाता है। नहीं तो कभी कभी दर्जनों किताबों को, बड़े बड़े मोटे किताबों को अपने पीठ के ऊपर लेके जाता है लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होता उसको। इस तरह हम लोग ये चार चीज जो बोला गया इसको सुनकर हम दुखित हो जाएंगे कि इस तरह खंडन किया गया है चार चीज। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने इन चारों चीजों को इसका पॉजिटिव सकारात्मक रूप से कैसे परिवर्तन किया जाए वो सिखाते हैं। ये जैव धर्म बताते हैं, ये आत्मबुद्धि जो है अपने शारीरिक चेतना में डूबे रहना, इसके बदले भक्तों को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरा इस तरह सोचना कि मेरा शरीर जो है भगवान का संपत्ति है, इस तरह सोचना मैं भगवान को हो चुका हूँ। जो जिस हर दिन हम लोग तिलक पहनते हैं सोचना चाहिए कि ये शरीर मेरा नहीं है भगवान का है, क्योंकि भगवान का श्री चरण मेरे माथे के ऊपर पहन रहा हूँ, ये तुलसी है। तो हर दिन हमें मौका मिलता है सोचने के लिए कि ये भगवान को हो गया हूँ मैं अभी मेरे शरीर को किसी भी तरह के गलत काम में लगाना नहीं चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी को चैत्र महाप्रभु ने बोला कि सनातन तुम्हारे शरीर में फोड़े हो गए हैं, इसके कारण तुम दुखित होकर सोचा तुम, मैं हर दिन आलिंगन करता हूँ इसको सोचकर तुम रथ यात्रा में अपने शरीर त्यागने की योजना बना रहे हो, लेकिन पहले तुमको ये बात मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा संपत्ति नहीं है, किसका है, मेरा है, ऐसे बोले भगवान। तो हरिदास ठाकुर नाचन लगे इसको सुनकर, बोले है सनातन को, सनातन तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान तुम्हारे शरीर को अपना बना लिया है, अपना मान रहे हैं। तो अगर कुछ बड़े वैष्णव हम लोगों को अपना मानते हैं तो कितना भाग्य हमारा है ना। तो अगर कोई गुरु शिष्य को अपना मानकर डांटते हैं, नहीं तो अपना मानकर सेवा देते हैं, तो ये बड़ा भाग्य है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम ऐसे कुछ वैष्णव के हो जाए, उनके मुकारविंदों से सेवा लेकर हम करें। ये पहला आत्मबुद्धि को खत्म करने का ये मार्ग है। हम अपने आप को इसलिए हम बोलते हैं, तुलसी को बोलते हैं कि तुलसी महारानी आप हमें अपना बना लो, नहीं तो किसी गोपी के आधीनता में रख दो, ताकि हमें इस तरह हम अपने काया वाचा मनसा हम पूर्ण रूपेण समर्पित भगवान की भक्ति में हम लग सके। इस तरह तो हम अपने शरीर को अपना नहीं मानना चाहिए। जैसे कुछ लोग कंपनी में ज्वाइन करते हैं, करने के बाद इतने कंपनी के हो जाते हैं वो। ऐसे हमने मिला कोई व्यक्ति को, बजाज कंपनी का था वो, हमारा बजाज है, बड़ा एकदम लंबा एक्सिंग था, बड़ा टर्बन भी पहना था, बड़ा पेट था। तो बोला कि हम पिछले 30 साल से बजाज कंपनी में काम कर रहे हैं। और मैंने पूछा बजाज कंपनी के बारे में, इतना आधा घंटा बोलने लगा, हमको कथा करने लगा कर बजाज के बारे में। बोला है कि हम स्कूटर बनाते हैं, ये बनाते हैं, लगा कि उनके पेट से बना रहे हैं सब कुछ, बजाज 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 ऐसे। तो लोग ऐसे मोहित हो जाते हैं, अपने आप को मानते हैं मैं कंपनी का हूँ, मैं देश का हूँ, इसका हूँ उसका हूँ सोचते हैं लोग। लेकिन हमें एक वैष्णव का हो जाना चाहिए, आत्मबुद्धि को परिवर्तित करके हमें सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, ये पहला। दूसरा है ममता बुद्धि। अगर कोई शादी करके बच्चे हुए हैं, घर में रहता है, तो कभी कभी पुरुष सोचता है कि ये सब मेरे गुलाम हैं, सबसे मेरे लिए सब सेवा करेंगे, मेरा काम करेंगे, ऐसे वो सोचता है। इस बुद्धि को, बुद्धि से ममता बुद्धि बढ़ता है उनसे, इसको कैसे खत्म किया जाए। अगर वैष्णव को घर में बुलाकर अगर धर्मपत्नी प्रसाद बनाकर सबको परोसती है, तो घर के दरवाजा खोल कर सब वैष्णवों को अनुमति देता है, आओ हमारे घर में हफ्ते में एक दिन कार्यक्रम करो। इस तरह करने से घर पवित्र हो जाता है वैष्णव के श्री चरणों की धूली पड़कर। साथ साथ जब धर्मपत्नी भाग दौड़ करके कुकिंग करती है, इससे पत्नी बच्चों के ऊपर ममता बुद्धि परिवर्तित होकर उसके मन में ऐसे विचार आता है कि मेरे पत्नी कृष्णदासी है, मेरे बच्चे सब कृष्णदास हैं, इस तरह की भावना बैठ जाता है और घर को ही वो मानता है जैसे भक्तनो ठाकुर गाते हैं, जे दिन गृहे भजन देखि गृहे ते गोलोक भाई। वो गाते हैं कि जब मैं घर में वापस लौट आता हूँ मेरे घर गोलोक वृंदावन बन गया, ऐसे बताते हैं। ऐसे ममता बुद्धि खत्म हो जाता है। शास्त्र कभी नहीं बोलते हैं कि पत्नी बच्चों को प्रेम नहीं देना चाहिए, घर की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहिए, शास्त्र कभी नहीं बोलते। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि छोड़ना नहीं है लेकिन जोड़ो भगवान से। और तीसरा बताते हैं इज्जत बुद्धि, अपने देश मेरा भारत महान। अनेक लोग सोचते हैं भारत किस लिए महान है, क्योंकि इतने संत महात्मा हुए हैं हर देश में। देखो महाराष्ट्र में तुकाराम हुए हैं, दक्षिण भारत में रामानुचार्य हुए हैं, कर्नाटक में माध्वाचार्य हुए हैं, हर भारत के देश के अंदर देखो कितने संत महात्मा हुए हैं, कितने तीर्थ स्थान हुए हैं, कितने धाम हैं। तो इसलिए भारत देश पवित्र है। इस तरह एक व्यक्ति भक्ति में जुड़कर समझ लेगा कि भारत की महानता इसलिए है क्योंकि ये भारत दिव्य है, दिव्य देश है। और चौथा है तो तीर्थ बुद्धि। तीर्थ बुद्धि को कैसे खत्म किया जाए? तीर्थ में तीर्थाटन करना, यात्रा करना गलत नहीं है, लेकिन यात्रा आते समय एक विचार लेकर आना चाहिए हमें कि हम और गंभीर बने भक्ति में और हमारे चित्त शुद्ध हो जाए। क्योंकि चित्त जितना शुद्ध नहीं है उतने हमारे चित्त में भौतिक इच्छाएं उठते रहते हैं, साथ साथ हमारे श्रवण भी ठीक तरह से नहीं होता। डिस्टॉर्टेड हियरिंग है बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। डिस्टॉर्टेड हियरिंग का मतलब है सेलेक्टिव हियरिंग होता है, क्योंकि हम वही बातों को सुनना चाहते हैं जो हमें थोड़ा रिलीफ दे। जानते हैं आप रिलीफ है? रिलीफ का मतलब है थोड़ा यात्रा में आकर थोड़ा रिलैक्स करें, ऐसे हमारे कान चाहता है। लेकिन डिस्टॉर्टेड हियरिंग से क्या होता है? इम्पोर्टेंट चैंटिंग होता है भाई। नॉट हियरिंग द स्पिरिचुअल मैसेज अटेंटिवली आवर चैंटिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट चैंटिंग। लेकिन अगर हमारे श्रवण मजबूत हो, उसमें शक्ति हो, तो हमारे जप में भी शक्ति रहेगा। जप में शक्ति रहने का मतलब क्या है? भगवान के श्री चरणों में निर्भर होकर भगवान के श्री चरणों को पकड़कर अपने चित्त में रखना, कभी छोड़ना नहीं, इस तरह की भावना के साथ हम नाम में हम जुड़ पाएंगे। ऐसे अभी देखिए कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी जो है, इसमें आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा के कारण अनेक भौतिक आसक्तियां हैं उसके मन में, क्या भक्ति नहीं कर सकता है? क्या वो भक्ति जरूर कर सकता है? ऐसे व्यक्ति भी ऐसा नहीं कि वो भक्ति में जुड़ नहीं सकता है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ना उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा उसको। भौतिक आसक्ति हमें थोड़ा धीमी से चलेंगे हम भक्ति में, जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे अगर बारिश का मौसम हो, कार आप चला रहे हो, आप देखेंगे कि बारिश बरसता रहता है, इसलिए आपको ये लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, वाइपर, वाइपर बोलते हैं ना, ऐसे करता रहता है ऐसे, है वाइपर लगाने से तो आगे आगे हम बढ़ पाते हैं, है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होता है, बारिश आने के कारण हम बहुत देर से चलेंगे, क्योंकि ठीक तरह से दिखेगा नहीं सामने कौन है ऐसे। इसलिए हम करते हैं चेतो दर्पण मार्जन, हमें मार्जन करना करते रहना पड़ेगा हमें। अगर हम मार्जन नहीं करेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। साथ साथ आगे बढ़ने वाले ऐसे नवसिखिया भक्त को अपराध भी नहीं करना चाहिए। अपराध करने से क्या होता है, अगर किसी कार चलाते चलाते देखते हैं कि कोई लूना में जा रहा है, थोड़ा ठोक दो उसको, तो क्या करेंगे वो ट्रैफिक लोग रोक देंगे हमको, बाद में आ जाओ, बाद में आ जाओ, दो घंटा खड़े रहो बोलेंगे। इस तरह से भक्ति करते समय किसी को ठोक देंगे हम, तो हमारे भक्ति में रुकावट आ जाता है, है ना। इसलिए अपराध भी नहीं करना चाहिए और भौतिक इच्छाओं को भी सफाई करते जाना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है। इसलिए हम देखते हैं कि मध्यम अधिकारी के स्तर पर अगर कोई आ गया हो तो उसके रुचि जो है भक्ति में एकदम गहरा हो जाता है, उसके श्रद्धा भी गहरा हो जाता है, शास्त्रार्थ, शास्त्र के ऊपर, शास्त्र के मतलब जो है, शास्त्र जो बता रहे हैं उसके ऊपर इसका गहरा श्रद्धा बैठ जाता है। शास्त्रों में, भगवान के श्री विग्रह में, हरिनाम में, वैष्णव के संग में, श्रीमद् भागवत के पठन में इत्यादि में उसके एकदम गहरा श्रद्धा हो जाता है उसका। तो श्रद्धा अगर गहरा हो जाता है तो भौतिक इच्छाओं को जीतना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसलिए पांच चीज पांच मुख्य अंग बताया गया है ना। तो इधर आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु पांचों चीज करते हैं, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, बोलिए साधु संग नाम कीर्तन मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को बोला कि तुम दक्षिण भारत छोड़कर इधर आ जाओ, तुम उधर मद्रास में गवर्नर था, उनको बोला कि जल्दी जल्दी तुम रिटायरमेंट लेकर इधर आ जाओ, पुरी में आकर रहो, हम दोनों साल संग करेंगे। महाप्रभु की इच्छा थी कि रामानंद राय के साथ हमेशा चर्चा करते थे महाप्रभु, प्रश्न पूछते थे रस तत्व के बारे में और रामानंद राय जवाब देते थे। ऐसे देखिए चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण होने के कारण अपने भक्तों की महिमा गाने में उनका और आनंद प्राप्त होता है, अपने गुणगान नहीं सुनना चाहते भगवान, इसलिए अपने भक्तों को ही प्श्न पूछ पूछ कर उनके मुखारविंदों से कथा सुनकर उनकी महिमा को बढ़ा दिया और हमको भी सिखाया कि भक्तों की महिमा क्या है, भक्तों की संघ की महिमा क्या है, ये भगवान ने दिखा दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो इधर रामानंद राय के साथ हमेशा वो चर्चा करते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के दोनों बाजू में दो बहुत श्रेष्ठतम भक्त, एक स्वरूप दामोदर, दूसरा रामानंद राय। रामानंद राय विशाखा सखी है और स्वरूप दामोदर ललिता सखी है। तो राधा जी के दोनों बाजू में आप देखेंगे, राधा कृष्ण के दोनों बाजू में ललिता विशाखा आप देखते हैं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव को लेकर आकर अपने दोनों बाजू में उन्होंने स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को रख लिया। तो महाप्रभु के मूड भावना जो होता था उसके अनुसार स्वरूप दामोदर कुछ भागवत के श्लोक गाते थे और रामानंद राय कुछ रस संबंधित तत्व को उनको बताते थे। दोनों भगवान चैतन्य महाप्रभु के आनंद को बढ़ाया ऐसे। इस तरह महाप्रभु ने सिखाया हमको कैसे हम संग करके भक्ति में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम परम पूज्य राधा स्वामी महाराज इस तरह सालों साल यात्रा लेके आकर इसमें भक्तों की संख्या को धीरे 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 ऐसे बढ़ा दिया है। हम लोग 1993 में मेरा पहला यात्रा के लिए हम गए थे, वो 24 दिन का यात्रा था वो। उसमें हम पहले गए वृंदावन, उसके बाद मायापुर, उसके बाद जगन्नाथपुरी, ऐसे 8-8 दिन ऐसे पूरा यात्रा किया। उसके बाद धीरे धीरे यात्रा का दिन कम करने लगे क्योंकि छुट्टी इतना नहीं मिल रहा था लोगों को। तो उस यात्रा में हमने देखा कि धीरे धीरे 500, उसके बाद 1000, 2000, अभी 6000, 7000 भक्त लोग आते हैं इस तरह। तो महाराज जी इन यात्राओं में बहुत आध्यात्मिक प्रभाव डालते हैं सब भक्तों के ऊपर उनके कथा के द्वारा। ऐसे महात्मा पुरुषों के संग से संग में आप देख सकते हैं, उनके प्रवचनों को हम सुनते हैं, उनका संग करते हैं, इसके क्वालिटी क्वालिटी का मतलब है द पोटेंसी टू टच द हार्ट एंड ट्रांसफॉर्म द हार्ट। ऐसे हम जो सुनते हैं उसके उससे हमारे चित्त के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि परंपरा का मतलब ये है कि एक हृदय से दूसरे हृदय में संदेश को पहुंचाना। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुखियंती सूर्य, एक हृदय से दूसरा हृदय। जैसे नारद जी ने वेद व्यास के हृदय में हृदय स्पर्शी बातें कहा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आप सुनते हो चौथा पांचवा छठे अध्याय में पहले स्कंद में। तो इस तरह वेद व्यास ने प्राप्त किया और उन्होंने आगे दिया। इस तरह भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया ज्ञान। तो इस तरह महात्मा पुरुषों की संग करने के लिए हम आते हैं इस तरह की यात्रा में, और इस तरह वो अनगिनत लोगों के हृदय को स्पर्श करते हैं, क्योंकि हम जितना हमारे चित्त शुद्ध होता है उतने लोगों को हम स्पर्श कर पाएंगे, नहीं तो नहीं है, अनेक लोग पहुँच नहीं पाएंगे। इस तरह पहला बोला मैंने साधु संग, दूसरा है नाम कीर्तन। नाम कीर्तन के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इधर जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर को नामाचार्य करके घोषणा किया और नामाचार्य रहते थे सिद्ध बकुल में। तो एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के जो टूथ पिक होता है ना दांत, उसके लिए जो टूथ पिक जगन्नाथ का लंबा लंबा होता है, बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, तो वो एक लेके आए थे और सिद्ध बकुल नाम के स्थान में उसको लगा दिया उसको। उधर से जो सिद्ध बकुल आया, अभी भी वो पेड़ देखते हैं, तो भगवान ने हरिदास ठाकुर को एक स्थान दिया, इधर आप इधर रहो और इधर नाम जपो, 300,000 नाम और रोज जपते थे ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य करके क्यों घोषणा किया? हरिदास ठाकुर थे एक मुसलमान परिवार के, लेकिन महाप्रभु दुनिया को सिखाना चाहा कि कोई भी किसी भी खानदान में जन्मे हो, अगर भगवान के भक्ति में जुड़ गया हो, जय कृष्ण तत्व बेता सही गुरु हो कि भी प्रकृन्यासी शूद्र के ना, तो ये दिखाने के लिए उनको ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है हरिदास ठाकुर, ये दिखाने के लिए भगवान ने उनको नामाचार्य करके। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रश्न पूछा नाम के संबंध में, इसलिए हरिनाम चिंतामणि जो प्रकाशित किया भक्ति विनोद ठाकुर ने, वो हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद है वो। तो ये नाम कीर्तन, भगवान चैतन्य महाप्रभु नाम कीर्तन भी करते थे। ये इतने पवित्र स्थान है ये जगन्नाथपुरी, ये लाखों करोड़ों सालों से ये आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रसिद्ध है। भगवान श्री पुरुषोत्तम नीलाचल के अधिपति भगवान श्री कृष्ण बहुत सालों के पहले इधर अवतरित होकर कोटानुकोटि लोगों को दर्शन दिया है, इनका रथयात्रा हुआ है इसे पहले से। तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो अनन्य भक्ति करते हैं भगवान के, इस तरह हरिदास ठाकुर भी अनन्य भक्ति करके भगवान हरि के ही नाम को लेकर बार बार जपते थे वो। तो आजकल पाश्चात्य देश में कीर्तन जो प्रभुपाद जी ने स्थापन किया हरिनाम संकीर्तन हिप्पी लैंड में जगत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन आजकल और भी नाम लोग करते हैं, अलग अलग काली का नाम करते हैं, शिव का नाम करते हैं और गणेश का नाम करते हैं, अलग अलग नाम करते हैं लोग। बड़े फेस्ट होता है अमेरिका में, कभी कभी 50,000 100,000 लोग आते हैं, तो वो लोग अलग अलग नाम गाते हैं इसे। तो इससे क्या पता चलता है कि लोगों को मालूम नहीं है कि भगवान के नाम में और दूसरे नाम में क्या फर्क है। भागवत में एक श्लोक देख लीजिए, मुमुक्षवो गोर रोपान, ऐसे एक श्लोक शुरू होता है, आप पढ़ेंगे उधर बताया गया कि विविध देवताएं होते हैं इस दुनिया में, कुछ देवताओं का रूप खूबसूरत होता है जैसे गणेश जी कार्तिकेय जी इत्यादि का, कुछ देवताओं का बहुत घोर रूप होता है जैसे काल भैरव भद्रकाली ऐसे रूप होता है, लेकिन भगवान के भक्त ये दोनों रूपों से आकर्षित नहीं होते। भगवान के भक्त सिर्फ भगवान के पुरुषोत्तम रूप जो है, जो भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, सीताराम हैं और राधा कृष्ण हैं, इन रूपों से ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि इन रूपों की पूजा भी ऐसे ही होता है, तुलसी से होता है, गंगा जल से होता है, पवित्र होता है ऐसे। तो एक बार सर्वम प्रभु बता रहे थे कि एक लड़की जो होती है 10-12 साल में किसी भी लड़के के साथ घूमती है वो, लेकिन अगर उसका 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, अगर शादी हो गया तो मान लेते हैं कि अभी पति है, अभी ये एकमात्र पुरुष है, पर पुरुष से संग नहीं करते वो। इस तरह वो बोले सर्वम प्रभु बता रहे थे कि शुरुआत में धर्म में जो इंसान जुड़ता है वो सोचता है कि सब देवताओं को साथ में लेके जाओ, इसका भी थोड़ा पूजा कर लो, किसी किसी घर में इतने पोस्टर होते हैं अलग अलग देवताओं का, सबको घुमा लेता है ऐसा है, ऐसे कर देते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद समझते हैं कि ये एकमात्र नाथ है, वो जगन्नाथ है। जगन्नाथ सिर्फ उड़ीसा के लिए नाथ नहीं, भारत के लिए नाथ नहीं, सारे जगत के लिए नाथ है। तो जगन्नाथ का आश्रय प्राप्त होने के बाद वो बाकी देवताओं का आदर करता है, लेकिन समझ लेता है कि एकलेश्वर कृष्ण आर सब वृत्या, वो समझ में आ जाता है उसको। इसलिए एक व्यक्ति को इस तरह कृष्ण को एकमात्र स्वामी अपने हृदय के नाथ मानकर भक्त में जुड़ना चाहिए, उसमें गहरा श्रद्धा आनी चाहिए एक भक्त को, तभी तो हम निर्भर रह पाएंगे। जैसे एक बच्चा होता है अपने माता पिता के ऊपर एकदम निर्भर रहता है, अब यात्रा में अनेक बच्चे आए हैं, ये बच्चों को मालूम नहीं पूरी किधर है, किधर टहने की व्यवस्था है, किधर खाने की व्यवस्था है, सब माता पिता देखते हैं उसके। जिस तरह वो निर्भर रहते हैं माता पिता के ऊपर, इस तरह के भक्तों को भगवान के ऊपर निर्भर रहना बहुत शुद्ध भक्ति में इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है। हम लोग नाम जपते हैं लेकिन वी आर अनेबल टू डू एक्सक्लूसिव डिवोशन एंड टोटल डिपेंडेंस, हम अनुभव नहीं कर पाते हैं भक्ति में, भगवान के ऊपर पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं हो पाते हैं। हम लोग बोलेंगे कि प्रभु जी क्या हम अलग अलग देवता क्या पूजा कर रहे हैं, क्या हम तो कृष्ण के ही कर रहे हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव डिपेंडेंस का मतलब क्या है? हम लोग इस दुनिया हमारे ऊपर जो एक छाप डाल रहा है, जैसे अगर लोग हमको मशहूर बनाना चाहते हैं, उस मशहूर बनने में हम उनके साथ हम नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं उसके लिए। हम इस दुनिया में अलग अलग भौतिक लोगों का आश्रय लेते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देवता का मतलब ऐसा ही नहीं सिर्फ गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, किसी भी भगवान को छोड़कर किसी भी एक जीव का आश्रय लेना खुद की स्वार्थी निजी स्वार्थ चीज़ों को पूर्ति करने के लिए, वो भी ऐसा माना जाता है। सो एक्सक्लूसिव डिवोशन रिक्वायर्स दैट वी हैव फुल फेथ इन कृष्णा। और इसलिए साधु संघ नाम कीर्तन, नाम कीर्तन अगर अटेंटिव ध्यान पूर्वक किया जाता है तो एक व्यक्ति के डिटर्मिनेशन जो विल पावर ये शक्ति जो है वो बढ़ जाता है, तो जितना बढ़ता है उतना राम में भी रुचि लगेगा उसको। एक माँ एक स्त्री ने अपने बेटी को बोला, उन्होंने मार्केट जा रही हूँ, इधर गेहूँ सुखाने के लिए डाला हूँ पीछे, थोड़ा देख रेख करो, थोड़ा ध्यान रखो उसके ऊपर, ऐसे बोलकर गई। तो उसकी बेटी बैठ गई तो माता भाई वो वापस लौट आ रही थी, देखा कि कुछ जानवर खा रहा है, कुछ गधा आकर कुछ खा रहा है उसको। बेटी को चिल्लाया उन्होंने, अरे तुमको देखने के लिए बोला, उसको भगाया नहीं तुमने? बेटी ने बोला, आपने भगाने के लिए नहीं बोला, सिर्फ देखने के लिए बोला। ऐसे देख लो, इतना ही ध्यान था उनका। इस तरह हम भी लोग माला ले लेते हैं हाथ में, गुरु जी ने बोला माला ले लो, ठीक है माला ले लिया, नाम रटो बोला नाम भी रट रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। इसलिए हमको अगर ध्यान लगना हो तो जिस तरह उद्धव जी ने शरण लिया भगवान की, तस्माद् भवन्तम् अनवद्यम् अनन्तपारम् सर्वज्ञम् ईश्वरम् अकुण्ठ विकुण्ठ दिष्ण्यम् निर्विण्ण धीरः मुखे वृजनाभितप्तो नारायणम् नरसकम् शरणम् प्रपद्ये। देखिए इस दुनिया में कोई भी अविवाहित स्त्री तरुणी होती है, उसके मन बहुत विचलित होता है, उसको चिंता होता है कि एक अच्छा पति मिल जाए, वो गुणवान हो, चरित्रवान हो, वो खूबसूरत भी हो, अच्छा कमाने वाला हो, अच्छा बड़ा घर बांध कर देगा, अच्छा गाड़ी लेकर आएगा, अच्छा मीठे मीठे बात करेगा, डांटेगा नहीं, अच्छा साड़ी देगा, अच्छा आभूषण देगा, हमको अच्छा संभालेगा, ऐसे एक आश्रय हमें मिल जाए। अगर एक स्त्री को ऐसे एक अच्छा पति मिल जाता है तो एकदम खुश हो जाती है जीवन भर वो। इस तरह हम सब लोग भी स्त्री हैं, क्योंकि हम प्रकृति हैं, हम ऐसे एक पुरुष के लिए हम खोज रहे हैं इस दुनिया में, ऐसे एक पुरुष हमें प्राप्त हो जिनके आश्रय पाकर हम शांत हो जाएंगे अपने मन में, हम खुश हो जाएंगे। हमारे आप लोग जानते हो एक भक्ति विनोद प्रभु करके एक विनोद प्रभु है हमारे इस्कॉन में, बहुत जोक करते हैं वो। उन्होंने एक बार मुझे बोला, देखो एक लड़का शादी करना चाह रहा था लेकिन नौकरी नहीं था उसको, तो प्रभु जी ने बोला देखो नौकरी जब तक नहीं मिलेगा तुमको शादी नहीं होगा। तो वो बोले कि एक हाथ में तुम्हें मोबाइल होना चाहिए, कॉस्टली मोबाइल, दूसरे हाथ में गाड़ी का चाबी होना चाहिए, तीसरे हाथ में घर का चाबी होना चाहिए और चौथे हाथ में ATM कार्ड होना चाहिए, तभी यीशु मसीह के चार हाथ हैं, तुम्हारे हाथ में चार चीज़ होना चाहिए तभी शादी होगा बोला उन्होंने। तो भौतिक दुनिया में इस तरह के चीज़ जब होता है तभी लोग आश्रय लेते हैं कि नहीं, लेकिन भगवान किस तरह के व्यक्ति हैं, हम उनके आश्रय कौन क्यों लेना चाहिए, वो उद्धव जी बता रहे हैं। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, एक श्लोक को बताऊंगा तो प्रवचन पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। देखिए बता रहे हैं कि तस्मात हे कृष्णा, मैं इसलिए मैं आपके ही चरण का आश्रय लूंगा मैं, क्यों? तस्मात भवंतम अनवद्यम, स्पॉटलेस। अनवद्यम मतलब किसी भी तरह का कलमश नहीं है। भगवान इतने शुद्ध हैं जैसे सूर्य मलमूत्र को चूस लेता है, खुद भी दूषित नहीं होता, उस स्थान को भी पवित्र करा देता है। सूर्य ऐसे, भगवान भी ऐसे ही है। भगवान पूतना के स्तनपान करके सिर्फ अपने दो ओंटों के स्पर्श से सारे पूतना के शरीर को सुगंधी शरीर बना दिया भगवान ने। ऐसे इतने पवित्र हैं भगवान। तो अनवद्यम निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं, प्रातः स्मरणीय हैं भगवान, वंदनीय है, अर्चनीय है, पूजनीय है और निष्पाप है। इस तरह बता रहे हैं कि अनवद्य है भगवान, अनवद्यम। इतने महान है कि किसी को अगर वध भी करते हैं, वध करके सदगति प्रदान करते हैं भगवान उनको। इस दुनिया में आप किसी को वध करके कुछ लाभ नहीं प्रदान कर सकते हो, लेकिन भगवान किसी को वध करके अपने धाम भेज देते हैं, अगासुर हो, पूतना हो, ऐसे। इसलिए भगवान अनवद्य है, इसके ऊपर भक्तों को स्मरण करना चाहिए। और इसके कारण आप देख सकते हैं कि हम सब लोग इस दुनिया में एक संबंध के लिए ढूंढ रहे हैं, किसके साथ संबंध हम जोड़े हैं, ऐसे हम ढूंढ रहे हैं संबंध। लेकिन आप देखेंगे कि देवताओं के साथ किसने संबंध जोड़ा, उसका सर्वनाश ही हुआ उसका। रावण हो, भस्मासुर हो, कोई भी हो ऐसे। लेकिन आप देखेंगे भगवान कृष्ण के साथ जिन्होंने भी संबंध जोड़ा, उनका जीवन मंगलमय बन गया, पवित्र हो गया। जैसे कुब्जा भगवान के साथ संबंध जोड़ा, सुंदरी हो गई वो। एक फल वाली ने संबंध जोड़ा कृष्ण के साथ, इतना ही नहीं कि उनको उनका टोकरी भर गया सोना चांदी से, लेकिन भगवान के साथ एक वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ उनको। सुदामा कुछ मांगा ही नहीं, सुदामा को सब प्रदान किया भगवान ने। आप देखेंगे कि कृष्ण के पास आकर लाभ ही लाभ हुआ है भक्तों को, किसी भी तरह का नुकसान नहीं है कृष्ण से संबंध जोड़कर। इसलिए ऐसे अनवद्य भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो जगन्नाथ के रूप में इधर नीलाचल के पर्वत में बैठे हैं, उनके पास आकर हमें कृपा याचना करना चाहिए कि हे भगवान, आपके साथ हमें संबंध जोड़ना है, आपके दास दासी बनना है और हमें प्रेम को जगाना है बस। तो इस तरह बताते हैं कि अनवद्यम अनंत पारम, और ऐसे भगवान की शक्ति की सीमा ही नहीं है। वो यमलोक में जाकर अपने गुरुपुत्र को लेके आते हैं, वरुण देव के लोक में जाकर अपने पिताजी को लेके आते हैं, महाविष्णु के पास जाकर एक ब्राह्मण के चार पुत्रों को लेके आते हैं। उनका क्या सीमा है शक्ति की, है कुछ सीमा ही नहीं है, कहीं भी पहुंच सकते हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम उनके धाम अकुंठ विकुंठ दृष्टियम बताते हैं, वो सर्वज्ञ हैं बोलते हैं। सर्वज्ञ का मतलब है इस दुनिया में अगर आपने किसी व्यक्ति के अंडर में काम किया, आजकल आईटी कंपनी में जो विद्यार्थी ज्वाइन करते हैं 12 घंटा 15 घंटा काम करते हैं, क्योंकि बॉस को पुश करना है तभी तो प्रमोशन मिलेगा, फॉरेन चांस मिलेगा, है ना। लेकिन 4-5 साल बॉस को पुश करने के बाद बॉस ट्रांसफर हो जाता है। इतना गधे के समान काम किया मैंने, अभी नया आदमी आ गया, अभी किसको क्या पता मेरे बारे में। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। सर्वज्ञ का मतलब है आपके जन्म के बाद जन्म आपके साथ जाने वाले व्यक्ति हैं भगवान। श्मशान में जब हमारे शरीर को आग लगा जाता है, उसके बाद भी परमात्मा आत्मा के साथ एक मित्र बनकर जाते हैं भगवान। इसलिए उद्धव बोलते हैं कि ऐसे भगवान को सेवा करना चाहिए जो हमारी सेवा को कभी भूलेंगे नहीं, सर्वज्ञम ईश्वरम। और कभी कभी कोई कंपनी में आपको बोलेगा कि देखो मैं जानता हूँ तुमने इतना कसरत किया है कंपनी के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं असक्षम हूँ तुमको प्रमोशन देने में, लेकिन मेरे ऊपर और एक व्यक्ति है, क्या करूँ। वो सुनता नहीं है, उसको जो लोगों ने उसको सोप लगाया, सोप क्या बोलते हैं, सोप लगाना, मक्खन मक्खन लगाया है, उसको प्रमोशन दे दिया है, हम तुमको दे नहीं पा रहे हैं, ऐसे कोई आपका बॉस बोलेगा तो जानता है आपने क्या कसरत किया है, फिर भी प्रमोशन दे नहीं पा रहा है क्योंकि कमजोर व्यक्ति है, क्योंकि उसके ऊपर है। लेकिन भगवान कौन है? ईश्वर का मतलब उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनके सम कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है भगवान है। इसलिए अनादि राज, इसलिए भगवान कृष्ण के सामने आप हमेशा उनके प्रार्थना में आप सुनेंगे आदि नाम हमेशा आएगा, येष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, भीष्म ने बताया पांडव के, पांडव ये आदि नारायण है, इसका मतलब ओरिजिनल कॉपी है नारायण का, बाकी सब जेरॉक्स कॉपी है। आद्यो नारायण अपन बोलते हैं। इस तरह आप सुनेंगे कालिया कालिया के धर्मपतियाँ प्रार्थना करते हैं, वो भी बताती हैं आदि ऐसे बोलते हैं। अर्जुन प्रार्थना करता है आदि देवम अजम एवम, आप बार बार सुनेंगे आदि पुरुष। तो ये पुरुषोत्तम नीलाचल में जो बैठे हैं भगवान जगन्नाथ, ये आदि पुरुष हैं। तो अकुंठ विकुंठ दिशनियम, इनके ना इनके धाम के अंदर अगर किसी का प्रवेश मिल गया बस उसको दुख का, उसके जीवन में दुख का नाम निशान नहीं रहेगा उसके, क्योंकि अकुंठ विकुंठ दिशनियम भगवान के धाम में प्रवेश करने के बाद किसी को किसी भी तरह का शोक मोह भय इत्यादि प्राप्त नहीं होगा। इस तरह बोलते हैं भगवान का शरण लेना चाहिए इसे। तो मैंने बोला साधु संग नाम कीर्तन, नाम कीर्तन के लिए चैत्र महाप्रभु ने हरिदास गुरु को नामाचार्य बनाया इधर सिद्ध बकुल में। तो सिद्ध बकुल में अनेक लीलाएं हुए, ये ऐसे एक स्थान बना जो प्रीति लक्षण के लिए। इधर सिद्ध बकुल में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को लेकर आकर हरिदास ठाकुर को बोला कि हरिदास ठाकुर तुम और सनातन सजातीय है, आप दोनों को कृष्ण लीला चर्चा करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है, तो आप दोनों मैत्री जोड़ो और बैठकर आप कथा कथा का चर्चा करो। इसलिए तो सनातन और हरिदास ठाकुर अच्छे मित्र बने इधर। तो रूप गोस्वामी को भी लेके आकर परिचय करा दिया महाप्रभु ने इधर वृंदावन भेजने के पहले। तो रूप गोस्वामी रहते थे इधर सिद्ध बकुल में, अनेक लीलाएँ हुए हैं रूप गोस्वामी के से संबंधित। तो मैं इन लीलाओं को बोल नहीं रहा हूँ, इसका एक कारण है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी उनके शाम की कथा में बताएंगे, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं मैं। लेकिन मधुर मधुर लीलाएँ हुए हैं इधर, भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कैसे पेश आते हैं और भक्त आपस में कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, सब हम पाते हैं सिद्ध बकुल में। साथ साथ सिद्ध बकुल में 300,000 नाम जपते थे रोज हरिदास ठाकुर। तो साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, भागवत श्रवण करते थे चैतन्य महाप्रभु किधर, गदाधर पंडित के पास जाकर छोटा गोपीनाथ में। तो गदाधर पंडित बार बार महाप्रभु उनको विनती करते थे कि और कथा वही कथा वापस दोहराओ, ऐसे बहुत आनंद लेते थे महाप्रभु। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, महाप्रभु किस विषयों के ऊपर कथा सुनना चाहते थे, जैसे प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र इत्यादि के ऊपर हम कभी सोचते हैं कि शायद सीधा दशम स्कंद पहुँचे होंगे, गोपी गीत सुनना चाहते थे ऐसे, लेकिन महाप्रभु बैठकर प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र इत्यादि सुनते थे वो। इसलिए हम लोग भी भागवत पढ़ने से अनेक लाभ प्राप्त होता है। यत शृण्वतो अपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यत्तचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदैव हारं वदमन्यसे चेत्। इस तरह से परीक्षित महाराज 5 लाभ बताते हैं श्रीमद् भागवत के श्रवण से। पहला बताते हैं कि अगर हम भागवत सुनते सुनते सो जाते हैं थोड़ा झटका लग जाता है, तो बताते हैं कि चिंता मत करो, सुनते जाओ ये नींद उड़ जाएगा, ऐसे बताते हैं। क्यों अरति अपैति बोलते हैं, देखिए नया छोटा बच्चा जो होता है ना उसको खिलाना बहुत कठिन बात है, माताएं जानती है। माताएं छोटे बच्चे को खिलाने के लिए हाथ में लेकर जाते हैं कुछ दही बात कुछ, तो बच्चे भाग जाता है, सोचता है कि अभी माता छोड़ेगी नहीं मुझे, तो ये कमर में वो कमर उधर से इधर भागता रहता है, उसको पकड़ कर बिठा कर खिलाते हो। लेकिन आप लोग बड़े होने के बाद आपके पीछे कोई नहीं पड़ते, आप प्लेट लेकर आ जाते हो आप। इस तरह आप देखेंगे शुरुआत में अगर कोई इस्कॉन में जुड़ रहा हो, अभी एक माला भी चाल नहीं हुआ हो उसका, उन लोगों को हमारे प्रोग्राम में लाना बहुत कठिन है ना। प्रोग्राम में लाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बताएंगे, उनको प्रोग्राम में ला कर बिठा कर कुछ प्रवचन देना, उनके लिए बहुत नाटक करना होता है उनको समझाने के लिए, क्योंकि अगर सीधा फिलासफी बताएंगे तो भाग जाएंगे वो, उनको क्या क्या बोलना होता है, अलग अलग स्टोरी बताकर आइस ब्रेकर इतना करके अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाकर कीर्तन करके उनको पकड़ कर रखना होता है। लेकिन सोलह माल आने के बाद लोगों में रुचि जग जाता है, अपने आप आ जाते हैं प्रवचन में, वो गेस्ट पहले जो होते हैं होस्ट बन जाते हैं वो, है ना, बाकी लोगों को भी बुला कर लेके आते हैं वो। तो इस तरह अपैति अरति भागवत सुन सुनकर हमारे में अरति अरति का मतलब है रुचि ना होना, वो खत्म हो जाएगा बोलते हैं। और वितृष्णा का मतलब है जो हमारे अंदर भोग वृत्ति जो है, भोग करने की प्रवृत्ति जो है, उसको तृष्णा बोलते हैं उसको। लेकिन कृष्ण जब प्राप्त होते हैं तृष्णा निकल जाता है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ऐसे बताया गया विष्णु पितामह के संबंध में। वितृष्णा का मतलब है किसी भी तरह का भौतिक अगर आकांक्षा नहीं है तो हम शांति से भक्ति कर पाएंगे। देखिए चैतन्य चरितामृत में बार बार ये शब्द आता है, निश्चिंत होकर हमें भक्ति करना चाहिए। लेकिन हम सब लोग जानते हैं चिंताएं बहुत होता है। अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ऊपर अगर बर्थ के ऊपर आपने एक लैपटॉप बैग रखा है आपका, और आप बाहर ऐसे ही सुंदर हरियाली देख रहे हैं बाहर प्रकृति में, तो कोई ऊपर चढ़ रहा हो कोई सोने के लिए, क्या आप शांति से बैठ पाओगे? तुरंत सोचेंगे कि लैपटॉप को चोरी कर लेगा ना, तो तुरंत आप उसको ले लेंगे। इस तरह आपके और लैपटॉप के बीच में एक संबंध है, एक कनेक्शन है, इनविजिबल कनेक्शन। इस तरह नीचे एक लगेज है, बाजू में एक लगेज है, चित्त होता है ना। अगर आपका बच्चा बाहर गया है, आप बोल रहे हो ट्रेन से बाहर मत उतरो, बोलता है नहीं नहीं अभी ट्रेन खड़ा है, मैं थोड़ा स्टेशन में बाहर खड़े रहता हूँ, तो आपका चिंता उसके साथ भी होता है। बेटा ट्रेन भारत में तो ट्रेन धीरे से ही शुरू होते हैं, बुम बुम ऐसे आवाज करते हैं वो, तो आप समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ। चिंता अलग अलग होता है हमारा, तो निश्चिंत होकर हमें भजन करना हो तो ये भोगवृत्ति बहुत सताता है जीव को। लेकिन भागवत सुनने से भोगवृत्ति निकल जाएगा, सेवा वृत्ति आ जाएगा हमारे में। यत शिण्वतो अपैत्यरतिर् वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति। कैसे होता है यह सत्व मतलब हमारे हृदय शुद्ध्यति, हृदय क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जितना हृदय शुद्ध होता है ना उतना भौतिक प्रलोभनें भौतिक आकांक्षाएं कम होते जाएंगे, शांत हो जाएगा मन। ये नाम सुनने से भी भागवत सुनने से भी दोनों से, यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, नाम श्रुति से चित्त निर्मल होता है बताते हैं। तो इस तरह सत्वं तु शुद्ध्यति अचिरेण, जल्दी ही जल्द शुद्ध हो जाएगा। प्रपंच बोलते हैं कि नाम लेकर भागवत कथा सुनकर अमेरिका के छोटे छोटे लड़के भी सिनेमा देखना बंद कर दिया, सब तरह की बुरे आदतें बंद हो गया। जो लोग शराब पीते थे वो लोग काफ़ी भी नहीं पीते, जो लोग गोमांस खाते थे वो लोग कांदा लहसुन भी खाते नहीं है। इतना परिवर्तन कैसे आया, भागवत कथा सुनकर और नाम सुनकर। तो इस तरह अपैति वितृष्णा सत्वं तु शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ, भक्ति जागृत होगा हृदय में। और पुरुषे च तत्पुरुषे च सख्यम, भक्तों के साथ मैत्री जोड़ेंगे हम। देखिए शुरुआत में हम भक्तों का आदर देते हैं इस संस्था में आने के बाद, उसके बाद झगड़ा करते हैं भक्तों के साथ। लेकिन भागवत कथा का श्रवण गहराई से होने के बाद मैत्री जोड़ते हैं भक्तों से। ये तीन स्तर होता है। पहले हम आदर देते हैं क्योंकि सबको आदर देते हैं, पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन उत्तम भागवत है कौन मध्यम भागवत है कनिष्ठ है मालूम नहीं, सबको दंडवत है, चारों दिशाओं में दंडवत है, ऐसे करते हैं। लेकिन थोड़े समय होने के बाद भक्तों के साथ झगड़ा करते हैं क्योंकि वो प्रोग्रेसिव स्टेज है, वो कनिष्ठ से मध्यम के, लेकिन मध्यम आने के बाद भक्तों से मैत्री जोड़ते हैं, इस तरह है। तो ऐसा प्राप्त होता है भागवत श्रवण। चैतन्य महाप्रभु खुद एक उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने, क्या उदाहरण प्रस्तुत किया, इधर तोटा गोपीनाथ में जाकर भागवत कथा श्रवण किया। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास। तो ये जो है जगन्नाथपुरी धाम, इधर दोनों है, ये नीलाचल का नीलाचल जो है और सुंदराचल जो है, सुंदराचल का क्या है गुंडीचा मंदिर, तो गुंडीचा मंदिर क्या है वृंदावन है, और नीलाचल क्या है द्वारका है। तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप लेकर, द्वारका में भगवान कृष्ण के पास शंख चक्र गदा पद्म है। नीला चले शंख चक्र गदा पद्म ऐसे बोलते हैं ना, तो शंख चक्र गदा वगैरह धारण करते हैं भगवान। लेकिन इधर से जब रथ यात्रा के समय उधर जाते हैं सुंदराचल में, उधर उनके मुकुट को तोड़ देते हैं ब्रजवासी लोग, हैं निकाल देते हैं, बस ये क्या मुकुट, बड़ा मुकुट है, राजा का मुकुट पाने हो तुम, सब छोड़ दो हैं। फिर उधर उनको टर्बन पहना देते हैं और मोर पंख पहनाते हैं और उनको मुरली दे देते हैं ऐसे। एक बार एक राजा इधर जगन्नाथपुरी में एकदम भगवान जगन्नाथ को ऐसे पहनाता था कपड़ा, ऐश्वर्यशाली कपड़े पहनाता था वो, राजा जैसे राजवेश, तो उनको शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि देता था उनके हाथ में। लेकिन दोपहर के समय एक ब्राह्मण वैष्णव आता था और उसको निकाल कर उनके हाथ में मुरली दे देता था और भगवान को मोर पंख पहना देता था वो। तो शाम के समय राजा वापस दर्शन के लिए आता था कि सोचते अरे क्या कर दिया आप लोगों ने, तो वापस वो सुबह जैसे दर्शन कर देता था ऐसे। तो एक दिन राजा को पता चला कि ये ब्राह्मण ऐसे कर रहा है, दोनों के बीच में एक वाद विवाद हुआ है। तो दोनों एक मुद्गर ऋषि के पास गए, तो जाकर बोले कि राजा बोले देखिए भगवान द्वारकाधीश कैसे पहनते हैं कपड़े, तो ये ब्राह्मण क्यों ऐसे कर रहा है। तो ब्राह्मण ने बोला ये जगन्नाथ कौन है, ये ब्रजेंद्र नंदन है, इनको मोर पंख होना चाहिए, मुरली होना चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया। तो मुद्गर ऋषि दोनों को सुना, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, क्या किया जाए। तो बोले एक हफ्ते के लिए ठहरो हमारे आश्रम में आप लोग, तो मैं सोच कर आपको इसका जवाब दूंगा। तो दोनों ठहर गए। तो राजा सुबह अपने ब्रेकफास्ट नाश्ता लेने के लिए बैठा प्लेट के साथ, जैसे महाप्रसाद गोविंद बोल रहा था आंख बंद करके, लेकिन आंख खोल कर देखा प्लेट नहीं था, तो आश्चर्य हुआ उसको क्या हो गया। ठीक है खाया नहीं, उपवास हो गया उसको दोपहर तक। दोपहर के समय लंच प्लेट लेकर बैठा, आंग मत के प्रार्थना किया, आम कॉल करते का वो भी प्लेट खत्म हो गया। तो प्लेट क्यों गायब हो जाता, आश्चर्य किया उसने। तो अभी दोपहर को भी कहा नहीं पाया, शाम के समय कहते समय उसने एक आंग बंद करके एक आंग ठीक अभी देखा जाएगा कौन उठा रहे हैं उसको। तो ऐसे प्रार्थना बोलते बोलते देखा कि वो मुद्गर ऋषि खुद ही आकर वो उठा कर लेके जा रहे थे। तो पीछे पड़ा उनके पीछे, तो उनके शरीर भी नीला रंग का था, बड़ा लंबा दाढ़ी था, लंबा बाल था उनका। तो उनको तुरंत उनका हाथ पकड़कर पूछा कि आप क्यों उठा कर लेके जा रहे हैं हर बार। तो तत् क्षण वो नीचे गिर पड़े और मर गए। तो बहुत राजा जोर से रोने लगा, अरे बड़ा गलत हो गया, मैं करना नहीं चाह रहा था, क्या हो गया करके। तो अप्रकट हो गए वो, लेकिन उस स्थान में अचानक एक यज्ञ कुंड आ गया। तो यज्ञ कुंड में बड़ा आग होता है ना बीच में, उसमें भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गए, विष्णु आ गए उधर। तो इस तरह लीला के मुद्गल ऋषि के रूप में, तो भगवान ऐसे आकर ऐसे बैठे हुए, भगवान ऐसे बैठे थे पद्मासन में बैठकर, भगवान ने राजा को लेकर एक जांग में रखा और उस ब्राह्मण को लेकर जो विवाद करता था उसको लेकर जांग में रखा। दोनों को आलिंगन करते हुए भगवान ने बोला देखो आप दोनों लोग जो मेरा श्रृंगार करते हो, मैं दोनों श्रृंगार को मैं मानता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वृंदावन के ब्रजेंद्र नंदन का वेश और द्वारकाधीश का वेश दोनों मुझे पसंद है, इसलिए आप आपस में झगड़ा मत करो, एक दिन मुझे ऐसे सजाओ द्वारकाधीश के रूप में और दूसरा समय मुझे ब्रजवास के रूप में सजाओ, मुझे वृंदावन चंद्र के रूप में सजाओ, ऐसे उन्होंने भगवान ने उनको उन्नति किया। तो इस तरह आप देखते हैं जगन्नाथ जो है नीलाचल से सुंदराचल जाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण ही है, ओरिजिनल कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन, उनसे ही मथुरा के कृष्ण आते हैं और द्वारका के कृष्ण आते हैं। तो साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास, इसलिए मैंने बोला ये मथुरावासी है इधर भी रहना, क्यों, क्योंकि ये वृंदावन और द्वारका से अभिन्न है जगन्नाथपुरी धाम, क्योंकि इधर भगवान कृष्ण खुद ही वसन करते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इधर जगन्नाथपुरी में रहते हैं। और जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु रहने का एक मूल कारण है, आप लोग जानते हो कि सची माता ने उनको विनती की थी, वो तो एक कारण ही है, लेकिन दूसरा एक कारण है इसको एक विप्रलंब धाम माना गया है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपने रथ में आरूढ़ होकर बैठे हैं, उस समय चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव लेकर उनके आंखों से प्रेमाश्रु बह रहा है, एक विप्रलंब का अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं लेकिन राधा का भाव लेकर राधा राधा के भाव लेकर वो कृष्ण की स्मरण करते हुए वो रो रहे हैं, कौन? चैतन्य महाप्रभु। और जगन्नाथ जो है वो कौन है? जगन्नाथ, जगन्नाथ भी कृष्ण हैं, लेकिन राधा जी गोपियाँ, गोप, गाय, बछड़े और वृंदावन वासियाँ, इनके स्मरण करके भगवान जगन्नाथ वो रो रहे हैं। एक प्रेमाश्रम में, प्रेमाश्रम बाहर हैं वो भी। इस तरह देयर आर टू क्राइंग लॉर्ड्स, वन क्राइंग लॉर्ड इज सिटिंग ऑन द चैरियट, अनदर क्राइंग लॉर्ड इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द चैरियट, एंड वन लॉर्ड इज क्राइंग फॉर द ब्रजवासीज, एंड अनदर लॉर्ड इन द मूड ऑफ ब्रजवासीज इज क्राइंग फॉर कृष्णा। ऐसे आप देख रहे हैं, ये विप्रलंब धाम है ये। और आप देखेंगे जैसे अगर कोई किसी गृहस्थ भक्त हैं, उनको एक छोटा बच्चा हुआ है अभी अभी, तो पिताजी को लगता है कि ये बच्चे को देखता रहूं, आप ही जाने के लिए मन नहीं करता उसको, फिर भी आप ही जाना होता है, आप ही जाना पड़ता है। लेकिन आप ही जाने के बाद पत्नी को पूछता है, बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है क्या, उड़ गया क्या, खा रहा है क्या, क्या कर रहा है, खेल रहा है क्या, ऐसे पूछता है। तो उसका हृदय किधर है? घर में है, लेकिन काम धंधा है ऑफिस में। ये जगन्नाथ का बुरा हाल है उनका भी है? उनका उनका ड्यूटी किधर है? द्वारका में है, लेकिन हृदय किधर है? वृंदावन में। इसलिए उनका चेहरा ऐसे हो गया है, बड़ा बड़ा आंखें हैं ऐसे बड़ा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ एक वो भी प्रलंब भाव में है। वो सोच रहे हैं कि सब गोप गोपियाँ मुझे खींच रहे हैं वृंदावन की वो, लेकिन ड्यूटी पड़ा है ऑफिस में, क्या करूँ मैं। उनको जाने का भी इच्छा कर रहा है मन में, लेकिन काम भी पड़ा है, तो खींचे जा रहे हैं दोनों बाजू में। इसलिए ऐसे उन्होंने एक चेहरा प्रकट किया जगन्नाथ ने। और चैतन्य महाप्रभु एकदम राधा के पूर्ण रूपेण कृष्ण एक राधा का भाव लेकर अनार्पित चरण तिरा करुण यादव तीर्ण कलव समर्पयि तुम उन्नत जो उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरड सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वश्यचि नंदन। ये गीत इधर ही लिखा हमारे सिद्ध भक्त में, कौन? रूप गोस्वामी ने, यही इधर ही गाया गया ये सुंदर प्रार्थना। तो चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव लेकर आए हैं, राधा के भाव को प्रदान करने के लिए सारी दुनिया के जीवों को एक एकदम। इसलिए धाम जो है इधर कृष्ण एक ऐसे एक भावना में है, राधा के भाव में है, जिसको बोलते हैं मदनोक्य महाभाव बोलते हैं उसको है। मदनोक्य महाभाव का मतलब है ऐसे प्रेम प्रणय स्नेह राग अनुराग भाव महाभाव, उसके बाद मदनोक्य महाभाव, सातवां डिग्री प्रेम है। अंग्रेजी में बोला जाता है तो लव, मोर लव, मोस्ट लव, मोर लव, ऐसे बोलना पड़ेगा, पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। तो प्रेम गाढ़ प्रेम जो होता है, जैसे थोड़ा शक्कर को लेके लेकर अगर आप पानी में डालकर गरम करते हो, वो पानी शक्कर का पानी होता है, लेकिन पानी सूखने के बाद देखेंगे धीरे धीरे वो कैंडी बनता है ना, सुबह रॉक कैंडी बनता है उसके बाद, है ना। तो रॉक कैंडी जो बन जाती है मधुर के महाभाव। अगर किसी के हृदय में इस तरह का मधुर के महाभाव हो, उसका शरीर पूरा सुनहरा हो जाता है ऐसे है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं, लेकिन उनका शरीर सुनहरा हो जाता है ये इस तरह के मधुर के महाभाव प्रकट करके। ये राधा जी प्रकट करती है, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, ऐसे चैतन्य चैतन्य बताते हैं। तो ये भाव को प्रकट करते हुए चैतन्य महाप्रभु ये मूड में है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं इस धाम में आने के लिए, क्योंकि इस धाम में चैतन्य महाप्रभु इस तरह का भाव प्रकट कर रहे हैं और एकदम आनंद के ये जो विरह भावना है उसमें आनंद भी छुपा हुआ है, आनंद और विरह। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में विरह अलग चीज़ है, लेकिन भगवान के अनुपस्थिति में जो ब्रजवासियाँ विरह भावना जो अनुभव कर रहे हैं उसमें एक तरह का आनंद भी है। क्यों आनंद है? भगवान को इतना अनुभव करते हैं कि भगवान हमारे समक्ष ही है, ऐसे लगता है उनको है। तो इसलिए हम इस धाम में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु की इस भावावेश में जो हैं, ये भावावेश में अगर कोई व्यक्ति पिया हुआ हो तो कुछ भी लेकर दे देता हो पैसा, है ना, इसके पास जो होता है। इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु भी प्रेम को पीकर एक मत्त अवस्था में है, तो सबको प्रेम बांटने के लिए तैयार है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास और किस त्रिमूर्ति की वो भगवान सेवा करते हैं, जगन्नाथ की। आप देखेंगे कोई भी आते हैं जगन्नाथपुरी में, भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको लेके जाते हैं जगन्नाथ की दर्शन के लिए। हर दिन खुद भी दर्शन करते हैं, सुबह शाम दर्शन करते हैं। और सिद्ध बकुल में बैठे हुए जो हरदास ठाकुर हैं और सनातन, इन लोगों को प्रसाद लेकर आकर देते हैं उनको। ऐसे आप देखेंगे इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिखा दिया कि हमको नियमित रूप से भगवान के शिव ग्रहों का दर्शन करना चाहिए, अवसर झुकना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो पुजारी भगवान के शिव ग्रहों की सेवा करते आता है नियमित रूप से, अगर आप घर में करते हो नहीं तो मंदिर में करते हो, अपने मृत्यु के समय भगवान उनके चित्त में बस जाते हैं, भगवान है बसकर उसको भगवत नाम अपने धाम लेके जाते हैं। तो इस तरह पंचांग भक्ति जो है मुख्य अंग है, इन पंचांगों को चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं हम लोगों को इस धाम में। तो हम लोग कनिष्ठ अवस्था से उठकर मध्यम भक्ति प्राप्त करना चाहिए और मध्यम अवस्था से उठकर उत्तम भक्ति प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हम लोग सजातीय भक्त जो हैं, लाइक माइंडेड डिवोटीज, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसलिए हम यात्रा में आए हैं। क्योंकि कंपनी में हो सकता है कि आपके कलीग्स जो होते हैं शायद वो भक्ति में जुड़े नहीं हो, हमेशा बड़बड़ करते हैं, बकवास करते हैं, आपको रोज़ सुनना पड़ता है। कम से कम एक हफ्ते के लिए आपको सुनना नहीं पड़ेगा, आपको एक हफ्ते के लिए आप अच्छे अच्छे भक्तों के सहवास में रहकर उनके साथ कृष्ण के संबंध में विषयों को चर्चा करने के लिए मौका मिला है। और महाराज जी के मुखारविंदों से कथा सुनकर अनेक लीला जो हम जानते नहीं उसको जान पाते हैं, जिन लीलाओं को हम जानते हैं वापस हम उनको स्मरण कर पाते हैं, जिन लीलाओं को स्मरण करने से हमारे अंदर चित्त शुद्ध होकर प्रेम बढ़ेगा। तो इस तरह ये यात्रा एक बहुत अच्छा मौका है हम लोगों के लिए। धाम में आकर अनेक महान आचार्य आकर गए हैं, इस धाम में अनेक लीलाएँ हुए हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भगवान के संबंध में दो शब्द बोलकर भगवान के गुणगान करने के लिए मौका दिया है नंद दुलाल प्रभु और बाकी मेंबर्स, आपको धन्यवाद देता हूँ। श्री प्रभुपाद की I checked in Maharaj's lecture. Okay. Yes, his house is near Shwetaganga, I think. Beyond that, Maharaj doesn't say anything.
Okay. So, Bhakti Purushottam Maharaj mentioned something in his book.
You can say that, yeah. Yeah, you can say that. Yes, you can say that.
Hare Krishna, we will thank Radheshyam
Prabhu for his name. Hare Bol. Hare Bol.
अभी सूचनाएं ऐसी हैं, यहाँ से हम हरिनाम संकीर्तन करते करते चार जगहों पे जाने वाले हैं। यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे बाएं तरफ और श्वेत गंगा जाएंगे। श्वेत गंगा के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर है, कल महाराज जी शाम को बता रहे थे उनके घर में क्या क्या हुआ है, उसका दर्शन करेंगे। वहाँ से गंभीरा जाएंगे, गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु आखिरी जिन सालों में पूरी में रहते थे, अकेले रहते थे उधर, तो वहाँ पे जो लीलाएं हुई हैं उनका दर्शन करेंगे। और वहाँ से अभी प्रभु जी ने सिद्ध बकुल के बारे में बताया हमको, जहाँ हरिदास ठाकुर रोज 300,000 नाम लेते थे, वहाँ दर्शन करेंगे और वहाँ से फिर पंडाल पहुँच जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा समय लगे, लेकिन आज हमारा दोपहर का प्रसादम सर्विंग सेवा है, तो 11:30 बजे तक उन्होंने विनंती की हमसे कि 100 प्रभु और 15 माताएं, अगर थोड़ा आगे जो भी युवा हैं, जो यंग डिवोटीज हैं, शरीर से और मन से दोनों से, समटाइम्स एज डज नॉट मैटर, तो कृपया 100 प्रभु और 15 माताएं अगर 11:30 तक, मतलब 11:15 बजे तो हम वहाँ से निकलना होगा हमको सिद्ध बकुल से, बाकी लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो तीन जगह है इसमें से सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर, गंभीरा और सिद्ध बकुल, इसके बारे में प्रभु जी ने भी बताया और महाराज भी बताएंगे। जस्ट हम श्वेत गंगा जो है उस स्थान के बारे में हमने अभी राधेश्याम प्रभु जी को पूछा कि महाराज जनरली कुछ बताते नहीं है उसके बारे में, तो परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज है, उन्होंने किताब लिखी पूरी परिक्रमा के ऊपर, उसमें से महाराज जी ने जो बताया है श्वेत गंगा के बारे में वो हम आपको बताते हैं। तो श्वेत गंगा जो जगह पहले अभी जाएंगे यहाँ से निकल के, तो एक बड़ा सरोवर है और उसको नाम के अनुसार गंगा माना जाता है। जैसे तो कई लोगों का कहना है कि गंगा नदी जो है उसमें कभी बाढ़ आ जाएगी, पानी ज्यादा हो जाएगा, पानी थोड़ा कम हो जाएगा लेवल, उसी समय यहाँ श्वेत गंगा में भी पानी ऊपर हो जाएगा और कम हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन विद गंगा रिवर। फिर कहते हैं कई कई सालों पहले यहाँ पे एक जगन्नाथ जी के भक्त थे, उनका नाम था कड़चा महापात्र। तो कड़चा महापात्र, उनको प्रेम है जगन्नाथ जी से, लेकिन एक बार उनको इच्छा हुई कि हम वाराणसी में जाएंगे और गंगा नदी में स्नान करेंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, बहुत दूर है। तो ऐसा सोच के ये जो श्वेत गंगा है इसमें उन्होंने डुबकी लगाई। तो जब बाहर निकले तो वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है गंगा नदी के तट पे, वहां बाहर निकले और उनको जो मन में एक जो इच्छा थी वो भी भगवान ने पूरी कर दी और उनको एक आश्वासन भी दिया कि ये गंगा नदी से अभिन्न है। फिर से उन्होंने वो मणिकर्णिका घाट में गंगा नदी में डुबकी लगाई तो कहां निकले, गंगापुरी में, श्वेत गंगा में निकले। फिर महाराज जी बताते हैं एक मिश्रा जी थे, स्मार्त ब्राह्मण थे, वो भक्त ब्राह्मण नहीं थे, विधियों में ज्यादा उनकी रुचि थी, लेकिन एकदम पूरा सब विधि एकदम ठीक से करते थे। तो वो भी एक बार यहां जब आए तो विधि करते करते गंगा जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई और गंगा जी स्वयं ये जो कुंड है, सरोवर है, इसमें से प्रकट हुई और उनको बोली हम आपकी विधि पूजा से बहुत खुश है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है विधि करना, सारे नियमों का पालन करना। और बोले कि आप गोपाल मंत्र में दीक्षा लीजिए, आप हरिनाम लीजिए, तभी हम आपसे पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। और फिर उस समय एक भक्त थे यहाँ पे जिनका नाम था गंगा माता गोस्वामी, वो गंगा माता गोस्वामी से गंगा जी ने उनको बताया आप उनसे दीक्षा लीजिए, उनसे हरिनाम लीजिए और हरिनाम करेंगे तो हम आपसे परम खुश हो जाएंगे। तो जो पूरी के भक्त लोग हैं वो अपने पिताजी या परिवार में जब कोई जाते हैं तो श्राद्ध करने के लिए हमेशा यहीं पे जाते हैं, पास में जाते हैं, कहीं और नहीं जाते। श्वेत गंगा ये गंगा जी से अभिन्न है, तो हम पहले भी वहां जाएंगे, वहां पे तीन बूंदों से आप प्रक्षालन कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, फिर सारागुण भट्टाचार्य के घर पे, फिर गंभीरा और फिर सिद्ध भगवत, और ऐसा करके हम अभी आज वापस चले जाएंगे। तो एक छोटी सी सूचना थी हमारे कोऑर्डिनेटर की तरफ से कि कुछ भक्त जो ऐसे एरो लेके खड़े थे ना दिशा दिखाने के लिए, तो अभी भी थोड़ा सेवा करना वो एरो लेके, और शाम को श्री गौरचरण प्रभु है हमारे लेक्चर के पहले, उनको एरोज वापिस दे दीजिए। फिर कल हम अलारनाथ और साक्षी गोपाल ये दो जगह पे जाने वाले हैं, वहां की कथा फिर कल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। अगर किसी ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप व्हाट्सएप यूज करें तो कृपया ज्वाइन कीजिए, उसके ऊपर हम रोज अपडेट डालते हैं क्या करना है, कहाँ मिलना है, कितने बजे निकलना है, कृपया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अच्छा अभी एक ड्रामा है, सत्यनारायण प्रभु की तरफ से ड्रामा है, 2 मिनट बैठ जाइए, हरे कृष्ण।
I thought this is worthy to remember for people. Yes. They'll have to take home.
Yes, yes.
Thank you.
So sometimes I'll ask you, Congratulations, all 5 rasas also brought you to me. Vasya, Sakya, Vatsalya. No, I am asking you. Some devotees, Paramananda Puri, Vatsalya.
He has that.
Somebody got it.
Thank you, bro. Your Hindi is more good than English. People cannot speak in Hindi.
And it is simple Hindi, na? People like it. Yeah.
Mujhe Pranav bhi take it.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. बस आपका थोड़ा सा 5 मिनट लेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए, हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो जैसे हमने सामने देखा है शिशि राधा देवधरी मंदिर जो जगदानंद पंडित जी के अर्च विग्रह है, और वहाँ उस मंदिर में देखा है राइट साइड में जगदानंद पंडित कैसे महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो आइए इस बच्चों के द्वारा देखते हैं जगदानंद जाएंगे 500 साल पूर्ण इतिहास पुराने इतिहास में जाएंगे देखेंगे तो जगदानंद मंदिर और महाबोधि बीच में